તારીખ 27/9/1990 શ્રી પદ્મનંદી પંચવિષ્ટિકામાંથી અનિત્યાનું પરીક્ષા ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ઈડરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 31.
સૌખ્યં વૈશિકં સદૈવ તરલં મત્તાંગના પાંગરસ તસ્માદ ઇતિ ઉપલવાપ્તિ વિષયે શોકે કિં કિં મુદા. અર્થ, શરીર તો જલ કે બગુલો કે સમાન હૈ, જિનકા બગુલ જૈસે ક્ષણ ભર મેં નષ્ટ હો જાતા હૈ, બડબડી જાતી હૈ. શરીર તો જલ કે બગુલોં કે સમાન હૈ ઓર લક્ષ્મી ઇન્દ્રજાલ કે સમાન હૈ. કરોડો પતિઓ કી અરુણો પતિઓ કી લક્ષ્મી ભી ચાહતી હૈ તો નિર્ધન હો જાતે હૈ, નિર્ધન કે કરજમાન ભી હો જાતે હૈ. તથા સ્ત્રી ધન પુત્રો મિત્ર આદિક ખોટેપણ સે નષ્ટ હુએ નિયમો કે સમાન પલ ભર મેં વિનાશી હૈ. પરિવાર મેં ભી કભી કિસકા જાના હોતા હૈ કોઈ નિશ્ચિત નહીં હૈ. ઓર યુવતી સ્ત્રી કે કટાક્ષ કે સમાન ચંચલ વિષય સંબંધી સુખ હૈલી આચાર્ય કહેતે હૈ કે જ્ઞાન કે નાશ હોને પર, ઇસલી આચાર્ય કહેતે હૈ કે ઇનકે નાશ હોને પર વિદ્વાનો કો ન તો શોક કરના ચાહીએ ન મિલને પર હર્ષ ભી કરના ચાહીએ માનના ચાહીએ. વાત રહી આવાગમન કી, મિલને સે ન હર્ષ હોના ચાહીએ ઓર જાને સે ન શોક હોના ચાહીએ. બાત અપન એસે લેતે હૈ, આત્મા મેં આને પર આત્મા મેં કુછ આતા નહીં, જાને સે આત્મા મેં સે કુછ જાતા નહીં. એસા આવાગમન પર હર્ષ શોક નહીં કરના ચાહીએ, ऐसी बात तो उपदेश बोध में सर्वत्र है. सिद्धांत में जो ये बात है इससे ये बहुत पुष्ट होती है बात, क्योंकि आने पर आत्मा में कुछ आता नहीं, न द्रव्य में कुछ आता, न गुण में कुछ आता है, न पर्याय में कुछ आता है, और जाने से द्रव्य गुण पर्याय में से कुछ जाता नहीं, इसलिए उसका आने जाने में मेरा कुछ आता नहीं मेरा कुछ जाता नहीं ऐसा अनुभव होता है. और इस अनुभव से ये बोध है वो स्थिर हो सकता है, स्थायी हो सकता है. आवाज ये बात आवाज गोपाल प्रसिद्ध है कि जो पैदा हुआ है वह अवश्य ही नष्ट होगा, फिर मनुष्य लक्ष्मी आदि की उत्पत्ति में हर्ष मानते हैं, फिर मनुष्य है वो लक्ष्मी आदि की उत्पत्ति में हर्ष मानते हैं तथा उसके नाश होने पर शोक मानते हैं. ऐसा उनको नहीं मानना चाहिए तथा जिस प्रकार बने उस प्रकार अपनी आत्मा का ही कल्याण करना चाहिए. जिस प्रकार बने उस प्रकार लिया है, जिस प्रकार बने मतलब हर्ष शोकान्वित नहीं हो गए तो कल्याण हो सकता है, हर्ष शोकान्वित हो गए तो कल्याण नहीं हो सकता है, अकल्याण होता है. इस पर कोई विशेष विचार करना है.
उपदेश बोध और इसमें सिद्धांत बोध की जो बात आई
तो सिद्धांत को उपदेश तो यह है कि संयोग रूप जो सचेत अचेत सचेत अचेत मिश्र ऐसे जो संयोग है, उस संयोग में आना जाना तो होगा ही, क्योंकि न तो अनादि से कोई संयोग रूप है, इसलिए संयोग नया हुआ है। जिसका संयोग हुआ है वो कोई अनंत काल रहने वाला नहीं, योग होना अवश्यम भावी है, योग होगा ही। मतलब जब योग होगा ही, जब ऐसी बात सुनिश्चित है, तब जैसे सूर्य उदय होता है सुबह और शाम को अस्त होता है, तो सुबह हम हंसे और शाम को रोने लगे, ऐसी बात हो गई कि युग नहीं हुआ, ये हमारी खुशी की बात होगी। शाम को तो टाइम तो होगा ही, समय को तो कोई रोक नहीं सकते, तो उसको शोक करने लगे। और एक भी दूसरे शास्त्रों में ऐसा भी दृष्टांत है कि एक आदमी इसी एक जगह बैठा हुआ था, वहां से कोई राजा की सवारी निकली, तो राजा और राजा के साथ इनके जो भी है सारे मंजार साथ में थे, हाथी घोड़े पैदल सब, बहुत खुश हो गया कि जैसे अपने को कुछ मिल गया, लेकिन उनको तो कुछ मिला ही नहीं था। वो तो राजा अपने आप अपने कार्य में सवारे लेकर निकला था, ये आदमी वहां बैठा था इसलिए तो कहीं नहीं निकला था, इनके खातिर तो नहीं निकला था, लेकिन इनको हर्ष हो गया। तो कितना लंबा चौड़ा सब दिखने में आता है, लेकिन सवारी तो चलती थी, कोई वहां कोई पड़ाव नहीं रखा था, चल गई तो रोने लग गया। जब सवारी आ रही थी तो हर्षान्वित हो गया, पर जब जा रही है तो रोने लग गया, अरे 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 सब मेरा चला गया, वो सब मिल गया और ये सब चला गया। वैसे ये संयोग भी है, एक सवारी जैसी बात, कहीं चीजें आने लगती है और कहीं चीजें जाने लगती है। आने लगती है तो हर्षान्वित होता है, जाने लगती है तो दुखी हो जाता है, मेरा सब चला गया।
परिवार के सदस्य को वैसे ही ना,
सब जैसे परिवार के सदस्य के लेकर जितने भी सचेत अचेत सचेत अचेत मिश्र जितने भी पदार्थ हैं, ये उसे ऐसे ही। तो दूसरों ने ये देखा जी कि ये आदमी थोड़ी देर पहले तो बहुत हंसता था, कुछ खुशहाल दिखने में आता, अब थोड़ी देर के बाद ये रोने लग गया है, तो क्या हुआ है, तो कुछ इसको हुआ तो नहीं था, वैसे वो तो बैठा बैठा ही हंसता है और बैठा बैठा ही रोता है, लगता है कि अवश्य पागल है। ये दूसरों जो उनको ऑब्जर्व करते थे उनको तो ये पागल ही दिख गया है। इस वैसे ज्ञानी की नजर में यही संसारियों की स्थिति है, वो समझते हैं कि वो बेचारा इधर तो है, कोई सवारी आ गई चला गया, आई तो संगीत हो गए और चला गया, दोनों डर लग गया। वास्तव में इसमें पागलपन के सिवा कुछ नहीं है, और ये इसका दुख का कारण है, यही पागलपन दुख का कारण है।
इसमें तीव्र तीव्र मोह जो करता है, इसमें दर्शन मोह भेद मिथक जब ज्यादा होता है, ये जो पुत्रादि में मोह ज्यादा करता है तो भेद मिथक
ज्यादा है, क्योंकि ऐसा संयोग में अपनत्व अनादि से चालू है। संयोग में जो अपनत्व है वो कोई नई बुद्धि से नहीं पैदा किया, वो अग्रहित है। अलबत्त इसमें तीव्रता मंदता हो सकती है, लेकिन है अग्रहित है। ग्रहित तो उसे कहेंगे कि जैसे बुद्धिपूर्वक सैद्धांतिक विपरीत विचार कर रहे हैं कि पुण्य है सो धर्म है, ये पुण्य तत्व नहीं है, धर्म तत्व है। ऐसा जब ये विचार पूर्वक अंगीकार करता है तो वो ग्रहित हो जाता है, लेकिन अनादि से पुण्य में इष्टपना मान लिया है, पुण्य के फल में इष्टपना मान लिया है, वो ग्रहित नहीं है, वो अग्रहित है। वो पशु पंखी सब में ही होता है, उनको भी उनका जो बच्चा है उनसे वो प्यार करेगा, तीन छोड़ा वो भी, क्योंकि वो सिखाना नहीं पड़ता है, वो सीखी सिखाई चीज नहीं है। ये तो अनादि से ये संस्कार तो जीव में विपरीत संस्कार चला आया है, चल जहाँ तक वो ज्ञान नहीं होगा वहां तक वो संस्कार चालू रहेगा, इसलिए वो अग्रहित है श्रद्धा की अपेक्षा से। मनुष्य पर्याय में ही मुक्ति का मार्ग मिलता है, तो जहां मुक्ति का मार्ग मिलता है वहां अगर घूमता है इसलिए मार्ग देते हैं। हायर द पोस्ट हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, पोस्ट है चारों गतियों में मनुष्य की जो पदवी है वो ऊंची है, तो उसकी जिम्मेवारी भी, नुकसान करे तो वहां ज्यादा करे, मुनाफा करे तो वहां ज्यादा करे, दोनों बात वही है। इसलिए नवो पुरुषार्थ तो करी शके छे, पण दरेक गतिमां एक शरत छे कि ज्ञान तो ज्ञानी सिवाय मळतो नथी, आ सिद्धांत क्यांय तूटतो नथी। तो देव गति थी आपणे विचार करीए तो देव गति मां पण ज्ञानीओ होय छे, ત્યાંથી પણ જ્ઞાનનો સંભવ છે, અને દેવો નીચે મનુષ્ય લોકમાં આવી શકે છે, મુનિરાજો પાસે આવી શકે છે, જ્ઞાનીઓ સત્પુરુષો પાસે પણ દેવો આવે છે, અને તીર્થંકરો પાસે પણ દેવો આવે છે, એ ત્રણેય જ્ઞાનીઓ છે, તીર્થંકર પણ જ્ઞાની પુરુષ છે, નામલિંગી ગુરુરાજ મુનિરાજ છે પણ જ્ઞાની પુરુષ છે, સત્પુરુષ પણ જ્ઞાની છે, તો એની પાસે આવીને પણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકે, પછી પુરુષાર્થ નો કરે, પણ જ્ઞાની મળ્યા પછી એ પુરુષાર્થ જાગી શકે છે, ઉત્પન્ન થઈ શકે છે, જ્ઞાની પહેલા નહીં। આ સિદ્ધાંતો નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ આ પ્રકારનો વિશ્વની અંદર અનાદિ અનંત છે, અનાદિ અનંત આ નિમિત્ત નૈમિત્તિક સિદ્ધાંત પણ અનાદિથી છે, આ વસ્તુ સ્થિતિ છે, પાવે નહીં ગુરુ ગમ વિના એની અનાદિ સ્થિતિ, અનાદિ સ્થિત મને અનાદિ વસ્તુ સ્થિતિ છે, ભલે ગુરુ કઈ આપતા નથી, નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ છે, અનાદિ છે। એવી રીતે મનુષ્યમાં તો જ્ઞાની મળે તો થાય, પોતાની મળે ન કરી શકે, 3 ઇંચમાં સંસ્કાર લઈને ગયો હોય તો થાય, જ્ઞાની પાસેથી, પૂર્વે જ્ઞાની પાસેથી સંસ્કાર લીધા હોય તો 3 ઇંચની અંદર નવો પુરુષાર્થ જાગી શકે છે, નહીં તો 3 ઇંચમાં શક્યતા ઘણી ઓછી છે। અને નારકીની અંદર પણ 2 પ્રકાર છે, એક ઉપરની નારકીમાં છે ત્યાં જ્ઞાની સંભવે છે, પહેલી નારકીની અંદર, અથવા કોઈ દેવ પણ ત્યાં આવી શકે છે પહેલી પૃથ્વી સુધી, પછીની પૃથ્વીઓની અંદર જ્ઞાની કે કોઈ બીજા નથી જતા, તો ત્યાં સંસ્કારી જ જીવ કોઈ ગયો હોય નારકીમાં, એ ત્યાં નવો પ્રસાદ જાગૃત કરી શકે, પણ એ પૂર્વભૂમિ જ્ઞાની પાસેથી સંસ્કાર લઈને ગયો નરકમાં, એમ ચારે ગતિમાં સંઘની, 3 ગતિમાં તો સંઘની છે, 3 ઇંચમાં સંઘની ને સંઘની બે છે, બાકી મનુષ્ય નરક અને બે તો સંઘની છે બધા, જયારે 3 ઇંચની અંદર સંઘની છે એ બધા જીવોને સમયની પ્રાપ્તિનો પુરુષાર્થ એની દશાની અંદર પર્યાયની અંદર એનો જન્મ થાય ત્યારથી એ શક્તિ રહેલી છે, પુરુષાર્થ કરવાની શક્તિ એનામાં રહેલી છે, એ પુરુષાર્થ આત્મ પ્રત્યય કરે તો સમય દર્શનને પ્રાપ્ત કરે, અને અનાત્મ પદાર્થો પ્રત્યય કરે તો દૂર જાય સમય દર્શનથી, અને વધારે મુશ્કેલીમાં મુકાય, વધારે દુઃખી થાય।
શંભુ શરણ 3 ઇંચ જો જાતે હૈ વો ઉસ સમય મેં નહીં કર સકતા હૈ, શંભુ શરણ મેં त्रियंश जो आते हैं वो तो संस्कार लेके नहीं अगर आए तो वहां पर प्राप्त कर सकते
हैं उत्कृष्ट
भाषा का जैसे कोई समझ सकते
हैं करके दिव्य भूमि में सभी प्राणी अपनी भाषा में समझ लेते हैं। उतना ही नहीं, जैसे हमारी और आपकी हिंदी भाषा की बोली है, मैं हिंदी भाषा में बोलता हूँ आप समझ सकते हो, लेकिन तीर्थंकर के दिव्य ध्वनि आप सुनो तो आपको हिंदी भाषा में ऐसा समझ में आ रहा है कि कोई क्षणमस्त मनुष्य इतनी भाषा स्पष्ट नहीं बोल सके, उतना अपनी भाषा में समझ में आ रहा है। उसको ऐसा भी कहते हैं कभी कि कोई छदमस्त बात करेगा तो एक मुद्दे का तीन चार पहलू होगा, जैसे कर्म का बंधन होता है तो उसको चार पहलू हैं, प्रकृति प्रदेश स्थिति और अनुभाग। तो हम प्रकृति की बात करेंगे उस वक्त हम अनुभाग की बात नहीं कर पाएंगे, अनुभाग की बात करेंगे उस वक्त प्रदेश की बात नहीं कर पाएंगे। मैंने क्रम से हम समझा सकेंगे आपको, इसको प्रकृति कहते हैं, उसको प्रदेश कहते हैं, उसको अनुभाग कहते हैं। तो वहां तीर्थंकर के दिव्य ध्वनि में विशेषता है कि एक कर्म बंध के चारों पहलुओं आपको एक साथ पूरी साइड का तत्व मिल जाता है, इतना स्पष्ट आता है कि एक ही साथ चारों पहलुओं से ये द्रव्य कर्म का बंध कैसे होता है वो समझ में आता है। वाणी में इतने अतिशय है, वाणी में इस प्रकार का अतिशय
है। समझने वाला भी तो क्रम से समझता है,
नहीं समझने वाले को भी ऐसा समझ में आ जाता है कि एक साथ मुझे चारों बात समझ में आ गई, कह दी और समझाई, जो कहीं पर समझ में आए मुझे चारों बात एक साथ कही गई, वो कैसे पता चला कि समझ में आया, तब तो पता चला। ये बात कहां से, बात तो समझ में आई तब तो बात बाहर आई ना।
उसके ज्ञान में भी कोई इस प्रकार का समोसन में जाने के बाद में कोई विकास होता है,
नहीं वो सूक्ष्म जिज्ञासा में ये बात होती है। जिज्ञासा में ज्ञान प्राप्त होने का अवकाश है, इसलिए जिज्ञासा का महत्व बहुत है। आपने दिल्ली नहीं देखा है लेकिन ये उपनिषद है, उपनिषद पर टिका की है आद्य शंकराचार्य, तो पहले शंकराचार्य, अभी तो उसके उत्तराधिकारी सब शंकराचार्य बोले जाते हैं, जब तो नाम है उसका कैंसिल हो जाता है गद्दी पर बैठता है उसको शंकराचार्य कहते हैं। जो पहले हुए मैंने टिका लिखी उसको मन की भाषा में भाष्य कहते हैं, भाष्य। तो इस भाष्य का नाम है ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य। उसमें पहला सूत्र ब्रह्म सूत्र का ये है, ब्रह्म सूत्र मैंने उपनिषद, ब्रह्म मैंने आत्मा, आत्मा को कहने वाला सूत्र को ब्रह्म सूत्र कहते हैं, आत्मा को दर्शाने वाला सूत्र को ब्रह्म सूत्र कहते हैं। तो वो पहले क्या होता है, उन्होंने लिखा है ब्रह्म सूत्र में कि अथासो ब्रह्म जिज्ञासा, संस्कृत में सारा इसके टीका भी संस्कृत में और मूल उपनिषद भी संस्कृत में है। तो पहला यहां से चालू किया है उन्होंने अथासो ब्रह्म जिज्ञासा। तो अथ क्यों लिखा, जिज्ञासा में अथ क्यों लिखा, ये अथ शब्द पर उसका जो भाष्य चला है कितना विद्वान था कि आप देखोगे जैसे कोई प्रस्तावना लिखने में कोई एक चतुर्थांश ग्रंथ चला जावे, ऐसे एक सूत्र में जिज्ञासा की बात को स्थापित करने के लिए बड़े बड़े वॉल्यूम बने हैं शंकर भाष्य संस्कृत में। इन्होंने जिज्ञासा को बहुत महत्व दिया है और बाकी इसका महत्व है भी, जैसे अकेले सुनो और प्रश्न होने और सुनो उसमें बहुत अंतर है। ये विषय बहुत गूढ़ है, रहस्यमय है, कारण अध्यात्म का विषय है बहुत गूढ़ और रहस्यमय है। और इस विषय की जो परिणति है वो अभेद रूप है, इसमें भेद भंग भेद कम भेदने में आते हैं, इसमें अभेदता ही भेदी जाती है और उसके बहुत भंग भंग भेद हैं। जितने असमाधान हैं असंख्य प्रकार के, उतने असंख्य प्रकार के इसके समाधान इसमें गर्भित हैं। फिर से एक अभेद अध्यात्म परिणति में सर्वांग समाधान भरा है, इसके गर्भ में असंख्य समाधान भरा है। जितने असंख्य असमाधान के प्रकार है उतने असंख्य समाधान के प्रकार इनमें से निकलते हैं। तो ये एक अभेद में कितने भेद गर्भित हैं आप सोचो। तो जहां जहां से असमाधान निकलेगा, प्रश्न रूप से सामने आएगा, इस अभेद परिणति में से भेद पर करके समाधान यहां से बाहर आएगा। तो इसलिए इसको ऐसा कहते हैं कि प्रश्न है वो उत्तर को निकालता है। प्रश्नकार को बहुत महत्व दिया गया है अध्यात्म ग्रंथों में, जिज्ञासा को बहुत महत्व दिया गया है और उसका बहुत संकेत आता है। जैसे समय सार की छठी गाथा में ही है कि ज्ञायक आत्मा एक वो कौन सा है, ज्ञायक इति चेत को असो ज्ञायक इति चेत। उन्होंने कहा मुझे पता है कि मुझे क्या हुआ है, तो आपस में ये लोग चर्चा करें, बोलना मत, उनको ख्याल नहीं होगा क्या हो गया है, दसों दिन हो गए तो बोलना मत, उसको शौक आ जाएगा ये अंदर, तो उनको आसानी से बोले तो मुझे पता है कि मुझे क्या हो गया है, मेरा हाथ कट गया है, वो आपस की चर्चा में जवाब दे दिया। तो फिर मैंने पूछा कि अगर ये हाथ कट गया है तो तुम्हारे में से क्या गया, जरा देखो और देख कर बताओ कि तुम्हारे में से क्या गया है, कुछ गया है ऐसा अनुभव होता है। तो कहने मेरे में से कुछ नहीं गया है ऐसा ही लगता है, तो वो भी इंप्रेशन थे कि उसका हाथ पूरा का पूरा है, वो प्रदेश इतना संक्षेप नहीं हुए थे, हाथ नहीं दिखते माता है लेकिन मेरा हाथ तो पूरा का पूरा है, अनुभव मेरे ज्ञान में से तो कुछ जाने का सवाल ही नहीं है, तो किसी को अनुभव ही नहीं हो सकता है कि ज्ञान में से कुछ चला जाए। तो मेरे में से मतलब मेरे ज्ञान में से, ज्ञान है सो मैं हूं, सिवा ज्ञान जो कुछ है वो अन्य है, मेरा कुछ नहीं, अन्य द्रव अन्य भाव ये सब भिन्न ही भिन्न है। तो ये आने जाने का जो अनित्य पदार्थ का आने जाने का है वो अवलोकन करके प्रत्यक्ष तौर से महसूस करना है कि कुछ आया कि नहीं, कुछ गया कि नहीं। जब कुछ आया भी नहीं कुछ गया ही नहीं फिर हर्ष तो किसके लिए, वो सवाल ही पैदा नहीं है।
समागम में किस प्रकार से चर्चा आपस में करनी चाहिए कि इसमें ज्ञान ये बल बढ़ेगी, पदार्थ नित्य है मेरे में से कुछ गया नहीं आया नहीं, किस प्रकार की चर्चा
तो अगर करनी ही है सत्समागम में तो जो भी हमारे उदय होते हैं असमाधान तो उदय नहीं होते हैं और सुख दुख भी उदय नहीं होते हैं। तो जहां भी सुख लगा हो जहां भी दुख, प्रयोजन सुख दुख का है
जी,
भूल भी सुख में होती है और दुख भी तो अपने पर्याय में होता है। सुख नहीं होता है संसार में लेकिन सुख की भूल होती है और दुख भी होता है। तो ये भूल कैसे हुई और ये दुख कैसे हुआ, दुख सही है दुख का कारण सही नहीं है संसार में, ये तो चर्चा चली थी अपने कि दुख सही है दुख का कारण सही नहीं है। मेरा ये चला गया ये कारण खोटा है, तेरा कुछ नहीं चला गया, मेरा चला गया इसलिए दुख है, तो दुख है वो वास्तविक है, चला गया है वो जो बात झूठ है, दुख झूठ नहीं है कारण झूठ है। बस अपने अपने जितने भी प्रसंग बने जितने भी अपने परिणाम हो इनकी चर्चा करें, हमें कोई हवा में तो नहीं उड़ना है,
तो ना निकाल से उड़ी रहा है।
ऐसा तो नहीं जाना है चर्चा में। हम तो जिस भूमि में चलते हैं, जिस भूमिका में चलते हैं, जिस जमीन पर हम चलते हैं, उसी की चर्चा करें। इसमें वास्तविकता क्या है और कल्पना क्या है, कैसे ऐसे हो जाता है, क्यों हुआ, इसकी छानबीन करें।
तो सत्संग इसका नाम नहीं है कि एक सांस लेकर के बैठे हैं, ये सत्संग नहीं है।
गाथा का अर्थ कर लेगा और सत्संग हो गया, सो बात। ये गाथा का अर्थ मेरे परिणमन में कहाँ लागू होता है, इसका नाम सत्संग है। क्योंकि सत नहीं है, सत्संग की बात है। संग होता है तो अपने से संग करने की बात है। तो ये गाथा का संग मेरे में कैसे, ये तो सत है। सत वचन को सत कहें, सत भाव, सत वचन, सत द्रव्य, सत गुण, सत द्रव्य, सत पर्याय, ये सत वचन है। लेकिन उसका संग कब होगा, होता है सत्संग में तो संग होता है। लागू करे तब तो सत्संग, लागू नहीं करे तो सत्संग कहेगा। सवाल
अपने परिणामों की मुक्त रूप से चर्चा करना, ये सत्संग है।
देखो कितनी सरलता चाहिए इसमें, अपने परिणामों की चर्चा करने को कोई जाएगा तो कितनी सरलता होगी, कितना हल्कापन आएगा, तभी होगी। और ये तो तब होती है कि जो पूर्ण निर्दोष होने का ध्येय के साथ उसका बल आता है, तब तो ये होगा। तो मेरे तो पूर्ण शुद्ध होना है, पूर्ण निर्दोष होना है। एक दोष भी मेरे लिए तो कलंक है, और थोड़ा तनिक भी कलंक मेरे पर तो मैं नहीं चाहता हूं। यहां से ही उठेगी बात, तो ये बात बहुत आसान है। फिर जो है रास्ता, रास्ता बहुत सरल है, सुगम है, कोई आपत्ति नहीं, कोई विटंबना नहीं, कोई दिक्कत नहीं इसमें।
तो अनादि काल से ये हमें जो असरलता का भाव पड़ा है, इसके कारण से ये अनित्यता को ज्ञान जानते हुए भी उसमें बल नहीं आता है। अनित्यता को ज्ञान जानते हुए बल नहीं आता, इसका कारण ये है।
माने कि अपने जो कमजोरी है वो छिपाते हैं, और अपने कमजोरी लिए एक रोग है, इसके दवा हम करते नहीं है। हम वैद्य के पास बोलो और रोग ही नहीं बता रहे,
परम सत्य
हमको जहाँ दर्द होता है वही नहीं बता, वो इलाज कैसे करेगा।
सही बात,
सत्संग में तो इसका इलाज निकलेगा, हमको ये रोग है, हमको ऐसा दर्द होता है, हमको ऐसा दर्द होता है, हमको ऐसा तो इसके दवा की छानबीन होगी। ये लागू नहीं पड़ती है तो उसको इस्तेमाल करो, ये लागू इसको इस्तेमाल करो। जो रोग को ही छिपाएंगे ये उम्र कैसे बन सके।
तो आपस में मोक्ष और मोक्ष के बीच में जब ये चीज चले और उसके बाद किसी परम सत्संग में जाने आना पड़े तो फिर तो बात दूसरी हो जाती है।
ये सत्संग से प्रवेश पर्याय शुरू होती
है। सत्संग है वो सबसे बढ़िया साधन है मुक्त होने का। अगर मुक्त ही होना हो तो परम साधन है, इससे बढ़िया कोई साधन न देखने में आया है, न सुनने में आया है, न समझने में आया है।
मुक्त होना हो तो मुक्त रूप से अपने दोस्तों की चर्चा करो,
बस ठीक है,
ऐसे लेना।
तो वहां से मुक्ति चालू हो जाएगी, मुक्ति तो वहां से चालू हो जाएगी। समीप प्रश्न क्या थी, ये सरलता के एक स्टेज है, दूसरा कुछ नहीं। ये सरलपना चालू हुआ तो सरलता के स्टेज आगे बढ़कर के एक समीप दर्शन रूप में प्रकट होते हैं। ये सरलता का ही एक स्वरूप है, दूसरा कुछ नहीं है। सरलता के दृष्टिकोण से देखें तो ये सरलता के एक पर्याय है, जिसको हम सम्यक दर्शन कहते हैं। और मिथ्या दर्शन वो चीज है कि जो असरलता के एक पर्याय है, ये मिथ्या दर्शन।
सत्संग करा जगह से ना जाते हैं हम भी।
हाँ बात ये लगे
सत्संग में स्वरूप जाने समझने में ना आ रहा है, जैसे कभी काम में रुद्र था
वो तो रुद्र रुद्र को सत्संग मानता है, जैसे रुद्र को पूजा मानता है, पद बद बोले और रुद्र को भक्ति मानते हैं, जो पद बोल दिए तो भक्ति कर ले, ऐसी रुद्रगत बात होगी।
यार बाद में पड़ता है वैध मिशन में होता है
अग्रेत भी छूटने की वहीं गुंजाइश है वहीं ग्रेत होने की गुंजाइश है। वो तो व्यापार में जिसको बड़ा व्यापार है उसको ही बड़ा नुकसान जा सकता है, वो सब्जी वाले को कोई लाख करोड़ रुपए का नुकसान छोड़ा जाएगा कि इसका माल ही 500 रुपए का है दुकान में, 1000 रुपए का तो सब्जी है उनके पास, तो उसमें कोई लाख करोड़ का नुकसान थोड़ा आने वाला है। अगर सब जल गए तो 1000 का नुकसान हो गया, सब खत्म हो गए। जिसका व्यापार बड़ा उसका नुकसान बड़ा। ये व्यापार बड़ा है सम्यक दर्शन कर पाने के लिए तो व्यापार बड़ा है, इसका स्केल ही बड़ा है तो उसका नुकसान भी बड़ा ही होगा। जिस स्केल में धंधा है उस स्केल में नुकसान होगा। देखो बुद्धि विपरीत बुद्धि लगाता है, कल्पना कर लेता है मेरा आत्मा ऐसा है मेरा आत्मा ऐसा है, और फिर सही वास्तविक बात सामने आना तो ना भी करता है, क्योंकि मिथ्यात्व का भी एक बल है, ये भी जोर करता है। तो सही बात सामने आएगी तो कहीं ऐसा नहीं हो सकता है, तुम कैसे कहते हो, तुम्हारे पास ऐसी कौन सी चीज है कि उसको तुम निषेध करते हो, किस आधार से करते हो। हमारे एक मुमुक्ष से चर्चा चली, गुरुदेव ने ऐसा कहा लेकिन हमको ऐसा नहीं लगा, हमको तो ऐसा लगता है। हमने ये कहा, गुरुदेव ने तो अपने अनुभव से कहा, लेकिन आप किस आधार पर उसका निषेध करते हो, आपके पास जो पूंजी है वो तो बाह्य सूक्ष्म ज्ञान की है, और उनके पास जो पूंजी है वो तो उसका अनुभव की है, तो अपनी पूंजी से तो कहते हैं, तुम किस ताकत से ये बात करते हो, ये सूक्ष्म वाली बात जो है इसमें ये करने लायक नहीं है। ये तो अंधा दिखने वाले को कहता है कि तुम जितने पक्षी गिनते हो उतने नहीं है, मैं जितना कहता हूं उतना है, वो बात होगी ना। ये सोच समझ के संभाल करके तत्वज्ञान का अभ्यास भी बहुत गंभीरता से करने का विषय है, वरना गृहित मिथ्यात्व में आने में देर नहीं लगती। हाँ, ऐसा नहीं कि कुदेव को माने जभी गृहित मिथ्यात्व हो गए, भूल करे तो गृहित मिथ्यात्व है, भूल में आने से गृहित मिथ्यात्व है, क्योंकि मिथ्यात्व को ही भूल है, भूल पर भूल कर भी तो गृहित हो गया, एक स्टेज और बढ़ गया।
प्रसंग नित्य भावना प्रकरण है नित्य भावना के अनुभव यानी कोई ऐसा संग
सत्संग में तो सर्वगुण संपन्नता है इसलिए तो परम साधन कहा है, तो उसमें तो सभी गुणों का मूल है और सभी दोषों की दवाई इसमें है, इसलिए उनको परम साधन कहा है। कुछ भी पढ़ा नहीं, तुम शास्त्र पढ़ते हो सत्संग को भंग करके, ये तुम्हारा शास्त्रीय अभिनिवेश है, और सत्पुरुष का परम सत्संग मिले उसको तुम भंग करते हो, ये तुम्हारा अप्रशस्त शास्त्रीय अभिनिवेश है। बात क्या है, बहुत जबरदस्त बात क्या है। तो पावल देव ने कितनी बात कहने में जो हिम्मत की है, वो तो लोग तो पीछे पड़ जाते हैं। जैसे प्रत्यक्ष सदगुरु सम नहीं परोक्ष जिन उपकार, आचार्य का शास्त्र क्या जिनेन्द्र की बाणी देवी है, परोक्ष जिनेन्द्र का उपकार इसके बराबर नहीं है, सम मैंने बराबर इक्वल इसके बराबर नहीं। प्रत्यक्ष चतुर्थ गुणस्थान वर्ती सत्पुरुष के प्रत्यक्ष योग के समान जिनेन्द्र का उपदेश भी इसके समान नहीं है, कितनी हिम्मत कर दी है। लोग तो ऐसे करें क्या हरियंत से आगे उसको बता देते हैं, लेकिन क्या है कि सामने समाज नहीं थी, समाज होती तो बखड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा दंगल हो जाता है। जैसे ये सुभाने के लिए ये बात कही कि अनंत तीर्थंकरों से अधिक है तो सामने समाज नहीं थी, वरना तो तूफान ही तूफान हो जाते हैं। क्या कहते हो, तीर्थंकरों का अपमान करते हो, धीरेन्द्र का अपमान करते हो, ऐसा हो जाए उसमें तो लड़ाई हो जाती है समाज में, तो बर्दाश्त नहीं कर सकते इस बात को। समझे कि ठीक है समाज नहीं है तो अब तो हम जो बात कहनी हो तो कह के चले जाएंगे। जैसे लिखा है ना दीपचंद जी ने लिखा है
ना, दीपचंद जी
ने मेरी बात अगर मैं कहने को जाता हूँ तो लोग लड़ाई करते हैं, सुनने के लिए तैयार नहीं। अब मैं तो चला जाऊंगा लेकिन लिख के जाता हूँ, मुझे मेरे ध्यान में आई बात लिख के जाता हूँ। पात्रता वाले को तो एक अमृत मिलता है।
समाज की लड़ाई की भूमिका होने के बावजूद उनकी इतनी करुणा रहती है आने वाले जीवन के लिए।
उनको आने वाले में तो बहुत से सुपात्र जी भी होंगे। वो तो क्या है कि उनका घर में पानी नहीं भरता है, लेकिन उनको पता है कि सब तो उनके नहीं हो सकते, वो करुणा तो है। अनंत करुणा है, सीमा नहीं
है। शुरू वाली प्रकृति
तो जो उंधा है वो सलगता है तो उसके लिए और करुणा हो जाएगी कि चलो ये बेचारा आखिरी श्वास लेता था, मरने से बच गया था, इनके पर तो और करुणा आ जाएगी। तो कोई सलगता है तो इसके लिए तो बहुत आदर हो जाएगा, ज्यादा रिस्पॉन्स देंगे हम।
ये वास्तविक है, करुणा का सागर तो उनको कहा जाता है, वो कोई उपमा नहीं है, मतलब
नहीं
वास्तविक है।
सागर छोटा पड़ता है, उपमा क्या, उपमा तो छोटी पड़ती है, उपमा पूरी नहीं पहुंचती। ऐसे बात है क्योंकि ये सागर मर्यादित है, उसमें मर्यादा नहीं है। पांचवी गाथा है, दुखे वासुपस्थिते थ मरणे शोको न कार्यो गुणे संबंधो हृदय सम्मुति तस्मात् परिचिन्तनीयं मनीषं संसार दुःख प्रदो येन अस्य प्रभवः पुनः पुनरपि प्रायो न सम्भाव्यते। अर्थ है इसका, देह के संबंध से यद्यपि संसार में दुख तथा शोक आकर उपस्थित होते हैं तो भी विद्वानों को किसी पदार्थ के लिए दुख तथा शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह देह दुख तथा शोक की पैदा करने वाली भूमि है। इसलिए विद्वानों को निरंतर उस आत्मस्वरूप का चिंतन करना चाहिए जिससे भविष्य में नाना प्रकार के संसार के दुखों को देने वाली इस शरीर की उत्पत्ति फिर से न हो। अस्य प्रभाव पुनः पुनः अपनी प्राय न संभाव्यते, ये देखिए उत्पत्ति पुनः फिर से नहीं हो। मैंने देह के संबंध से यद्यपि संसार में दुख तथा शोक आकर देह के संबंध से मैंने देव में अपनत्व होने से देहात्म बुद्धि होने से संसार में सभी प्रकार के दुख उत्पन्न होने वाले हैं। सभी दुख की जड़ इधर है, क्योंकि जब देह अपने नहीं है तो देह के जितने संबंध वाले हैं जड़ और चेतन वो अपने कहां से हुए, सवाल ही पैदा नहीं होगा। भाई है तो भाई का लड़का भतीजा हो सकता है, तो भाई नहीं है तो उसका लड़का भतीजा कहां से हुआ। मैंने देह का संबंध नहीं रखा जिसने, उसने देह के संबंध वाले के साथ संबंध कैसे रखा।
એમાં એકત્વ ભેગતા બધા સંબંધો ઉભા છે.
से भिन्न आत्मा का जो भेद ज्ञान का प्रयोग है